स्वर्ग तक जाए। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक जाए, है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक जाए। पावन बिरसा न्याय अटल है तेरा, गहरे सागर सा निर्णय है तेरा। प्रभु मनुज और पशुओं का है त्राता, हे ईश्वर तेरा प्रेम अमोल सुहाता। हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, स्वर्ग तक छाई।
पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। दिव्य शब्द संग अर्थात एसवी जी का संकल्प है कि ईश्वर का वचन प्राणी मात्र तक पहुंचे। इसी संकल्प को पूरा करने का विनम्र प्रयास है मध्य भारत बाइबल प्रसारण केंद्र दिव्य वाणी इंदौर की यह प्रस्तुति। हमारी यही प्रार्थना है कि आप और आपके परिवार पर प्रभु की कृपा और शांति बनी रहे। पवित्र बाइबल प्राकथन। बाइबल की उत्पत्ति और संरचना। बाइबल क्या है? बाइबल की विषय सूची पर सरसरी दृष्टि डालते ही हम समझ जाएंगे कि एक पुस्तक नहीं वरन अनेक रचनाओं का संकलन है। यही नहीं, इसकी पुस्तकों के प्राकथनों से यह विदित हो जाएगा कि इनके रचनाकालों का विस्तार 10 शताब्दियों से अधिक है। ये पुस्तकें कई लेखकों की रचनाएं हैं जिनकी मूल भाषा कभी इब्रानी है और कभी यूनानी है। इनके साहित्यिक शैली में भी भिन्नता पाई जाती है। इनमें कहीं ऐतिहासिक वृत्तांत है, कहीं काव्य, कहीं नियमावली, कहीं उपदेश, कहीं पत्र और कहीं जीवन चरित्र। एक तिहाई मानव जाति द्वारा पवित्र माने जाने वाले इस ग्रंथ का सामान्य नाम बाइबिल है। बाइबिल शब्द यूनानी शब्द बिब्लोस से उत्पन्न है जिसका अर्थ पुस्तक है। वर्तमान बाइबिल की 73 पुस्तकों में 46 अर्थात बाइबिल की प्राचीनतम रचनाएं ईसा मसीह के समय किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। वे यहूदियों द्वारा आदर से संरक्षित थी और वे उन्हें ईशवाणी का दर्जा देते तथा अपने धार्मिक जीवन की नियामक समझते थे। ईसवी सन की पहली शताब्दी में नवगठित ईसाई शिष्य मंडली ने अधिकांश प्राचीन धर्म पुस्तकों को मान्यता दी और वह उन्हें अपनी धार्मिक विरासत समझने लगी। यद्यपि वह इन पुस्तकों को विशेषतः भजनों और नबियों के ग्रंथों को अपने दृष्टिकोण से देखने लगी। अपने पुनरुत्थान के बाद अपने भक्त शिष्यों के साथ रहते समय ईसा ने इस भेद का उद्घाटन कर उन्हें यह नया दृष्टिकोण प्रदान किया था कि प्राचीन रचनाएं विशेषतः भविष्यवाणियां अपने आप में तथा उनके मुक्तिदायक जीवन मृत्यु और पुनरुत्थान में चरितार्थ हो गई है। ईसा ने एक प्रसिद्ध प्रसंग में अपने दो शिष्यों को इस शिक्षा का आभास दिया था। निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमति हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। देखिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 25 से 27 तक। सभी शिष्यों से विदा होने के पहले उन्होंने पुनः यह शिक्षा दी थी, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 44 से 48 तक। अतः ईसा की शिष्य मंडली अर्थात कलीसिया में यह विश्वास पैदा हो गया कि हम लोग ही प्राचीन यहूदी धार्मिक साहित्य पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ईसवी सन के पहली शताब्दी के दौरान ईसाई उपदेशकों ने अनेक रचनाएं लिखी जिनमें ईसा की शिक्षा की व्याख्या पाई जाती है और नवोदित ईसाई धार्मिक जीवन के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणार्थ पौलुस और अन्य शिष्यों के पत्र, 4 सुसमाचार, लूकस का प्रेरित चरित्र और योहन का प्रकाशना ग्रंथ। इन रचनाओं को धीरे धीरे ईश्वर की वाणी का दर्जा प्राप्त होता गया और फलतः वे बाइबल में सम्मिलित की गई। निष्कर्ष यह कि यद्यपि बाइबल के पूर्वार्ध की पुस्तकों की उत्पत्ति यहूदी राष्ट्र में हुई थी, तथापि उनकी प्राचीन रचनाओं के साथ ईसाई युग की अर्वाचीन रचनाओं को संपूर्ण बाइबल अर्थात ईसाई संपत्ति समझा जाने लगा। ईसाई कलीसिया को इन प्राचीन पुस्तकों का अभिप्राय पहचानने का अधिकार है तथा उसी अधिकार से अर्वाचीन साहित्य की रचना हुई है। बाइबल प्रभु की वाणी।
धन्य है वे मानव जो दुष्टों की सलाह न माने, पाप मार्ग पर नहीं चले, अधर्मी संग न बैठे। धन्य है वे मां
कलीसिया ने ही इन सब रचनाओं को मान्यता प्रदान की है, क्योंकि कलीसिया इन्हें ईश्वर की वाणी समझती है। बाइबल की रचना अद्वितीय और अनन्य रूप से ईश्वर की वाणी है, ऐसा विश्वास कलीसिया का है। तिमथी के नाम पत्र लिखते समय पौलुस ने यह बात स्पष्ट कर दी है, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, वो शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। देखिए तिमथी द्वितीय अध्याय 3:15-17 तक। ईश्वर ने बाइबल की पुस्तकों की रचना में किस प्रकार प्रेरणा प्रदान की थी, जिसके कारण ये पुस्तकें ईश्वर की वाणी कही गई है, एक दिव्य रहस्य है। हमारा विश्वास है कि ईश्वर के पुत्र ने इस प्रकार देह धारण किया कि पूर्ण रूप से ईश्वर रहते हुए भी वह पूर्ण रूप से मनुष्य बन गए। ऐसे ही यह भी कहा जा सकता है कि बाइबल की रचनाएं पूर्ण रूप से मनुष्यकृत हैं, फिर भी उनमें ईश्वर के शब्द अवतरित हुए हैं। अंतिम विश्लेषण में यह एक दिव्य रहस्य है। बाइबल की पुस्तकें मानव द्वारा रचित हैं और ईश्वर द्वारा भी। हम समझ सकते हैं कि मानवीय साहित्य रचना क्या है, किंतु ईश्वरीय प्रेरणा तो अदृश्य कृपा है और वह पूर्णतः रहस्यमय है। उसकी सहायता से पवित्र लेखकों ने अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और अपनी व्यक्तिगत शैली अक्षुण रखते हुए तथा देश काल की सीमाओं में आबद्ध रहकर वही लिखा जो ईश्वर चाहता था। पवित्र लेखक एक दिव्य प्रेरणा के पात्र थे, जिससे उन्होंने मनुष्य जाति के लिए ईश्वर का संदेश लिखा तथा ईश्वर के संदेश के प्रभाव के दायरे में आए 10 शताब्दियों के स्त्री पुरुषों, उनके विश्वासों और संशयों, वीरता और कायरता, सफलता और विफलता, धर्म और अधर्म का वृत्तांत लिपिबद्ध किया। बाइबल से हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मनुष्य जाति के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना चाहता है तथा मनुष्यों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसराइल के साथ ईश्वर के प्रेम की कथा मूसा के द्वारा प्राचीन विधान की स्थापना पर आधारित है। बाइबल का यह खंड प्राचीन विधान कहलाता है। इसराइली वंश में उत्पन्न ईसा मसीह ने किस प्रकार समस्त मनुष्य जाति के साथ प्रेम के विधान की स्थापना की, यह इसके उत्तरार्ध में पाया जाता है, जो नवीन विधान कहलाता है। बाइबल की प्रामाणिकता की व्याप्ति ईश्वर और मनुष्य के बीच के धार्मिक संबंध तक है। अन्य क्षेत्रों में जैसे इतिहास, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, भूगोल आदि में इसमें आधिकारिक प्रवचन नहीं पाए जाते हैं। इससे हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि बाइबल मात्र प्राचीन साहित्य के बहुमूल्य मंजूषा नहीं है, न ही इसराइली प्रजा के धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों का विचित्र संकलन है। बाइबल कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें किसी लेखक ने ईश्वर के विषय में लिखा है। बाइबल प्रधानतः एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ईश्वर मनुष्य को संबोधित करता है। हमारे पवित्र लेखक इस सच्चाई के साक्षी हैं। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। देखिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 47वां वाक्य। इनका विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। देखिए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 31वां वाक्य। बाइबल पढ़ते समय इस बात की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इस पाठ में आमंत्रण का भाव निहित है। इसमें लेखक पाठकों को महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करते हैं। पाठक यह आमंत्रण अस्वीकार कर साहित्य अथवा इतिहास के रूप में भी बाइबल पढ़ सकता है, किंतु वह आमंत्रण स्वीकार भी कर सकता है, तभी वह यथोचित पाठ प्रारंभ करता है। ऐसे पाठ में पाठक लेखक के साथ संवाद प्रारंभ करने को तत्पर होता है। लेखक अपने विश्वास का साक्ष्य देता है और वही विश्वास पाठक में उत्पन्न करता है। ऐसे संवाद में पुरुषार्थ और मानव अस्तित्व के मूलभूत प्रश्न उठते हैं। यद्यपि बाइबल और उसमें प्रतिपादित विश्वास जिसको अपनाने के लिए लेखक आग्रहपूर्ण आमंत्रण देता है इतिहास विशेष पर आधारित है, तथापि समस्त मानव इतिहास उनका लक्ष्य है। बाइबल के लेखक ऐसे संदेश के वाहक थे जिसको पाने वाला मानव मात्र है, चाहे वो किसी देश या काल का हो। युगों से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के भक्त ईसाई मंडलियां इस पवित्र ग्रंथ से आत्मिक पोषण पाती रही हैं। उसका वर्णन कर वे उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करती रही हैं। बाइबल का पाठ करने से मनुष्य विश्वास का जीवन बिताना सीख लेता है, तथा यही विश्वास उसे पुनः बाइबल में पैठने की प्रेरणा देता है। बाइबल का पाठ। समस्त बाइबल एक लिखित संदेश है जिसे देने वाला स्वयं ईश्वर है, तथा पाने वाले सभी युगों के स्त्री पुरुष। अतः मानव जाति के लिए ईश्वर का प्रेमपूर्ण विधान समझने और ईश्वर की मुक्तदायी कृपा से लाभ उठाने के लिए बाइबल का पाठ करना आवश्यक है। बाइबल का पाठ सर्वप्रथम यूखारिस्ट आदि धर्म विधियों में होता है। वेटिकन महासभा ने उसके पाठ को सहज और सुलभ बनाने का आदेश दिया था। बाइबल शिक्षा संपन्न खजाना है जिसे खोलकर विश्वासियों के सामने रखना चाहिए, जिससे वे प्रभु के भोज में उसका रसास्वादन कर सके। देखिए धर्म विधि का संविधान क्रमांक 51। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरोहितों और प्रचारकों का कर्तव्य है कि वे हर रविवार, पर्वदिन और प्रतिदिन निर्धारित पाठ सुनाएं। विश्वासीगण उसे ध्यान से सुने और पाठों की शिक्षा हृदयंगम करें, यही कलीसिया की इच्छा है। उपर्युक्त पाठ के अतिरिक्त विश्वासी लोग उसका व्यक्तिगत पाठ अथवा अपने परिवार में सामूहिक पाठ कर सकते हैं। ऐसे पाठ से विश्वासियों को बहुत लाभ होता है। बाइबल के शब्द ईश्वर के शब्द हैं, इसलिए सबसे पहले बिना टिप्पणी या व्याख्या के मूल पाठ पढ़ना चाहिए। बाइबल अथवा उसकी किसी पुस्तक को समझने के लिए मूल पाठ से परिचय अनिवार्य है। पाठ और अध्ययन में अंतर है। प्राथमिकता पाठ की है। यदि श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में पाठ किया जाए तो पाठ पाठ प्रार्थना बन जाता है। पाठ किस प्रकार करें? पाठ का समय निर्धारित कर पाठ के पहले एकांत में कोई व्यक्ति, घर में माता पिता या कोई और, इस पर ध्यान दे कि हम ईश्वर की वाणी सुनने वाले हैं, अतः उसे श्रद्धा पूर्वक सुनना है। पाठ के बाद मौन के क्षण में इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि यह पाठ हमारे जीवन पर किस प्रकार लागू है। अंत में पाठ से प्राप्त कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जा सकता है। पारिवारिक पाठ प्रार्थना अथवा भजन के साथ समाप्त किया जा सकता है। कितना सुंदर है वो घर जिसमें यदि नित्य प्रति नहीं तो समय समय पर इस प्रकार का पाठ भक्तिपूर्वक किया जाता है। बाइबल का अध्ययन एक अलग बात है। इसमें अध्येता बाइबल अथवा उसकी कोई पुस्तक इस उद्देश्य से पढ़ता है कि वो प्रत्येक शब्द का अर्थ, प्रसंगों का वास्तविक आशय, प्रसंगों की आंतरिक संगति, लेखन शैली, रचनाओं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि समझे। ये कार्य भी बहुत आवश्यक और रोचक है, किंतु इसके लिए अधिकतर शिक्षक, टिप्पणी और व्याख्या का सहारा लेना पड़ता है। हर एक युग के बाइबल प्रेमी बाइबल के उन अध्येताओं के आभारी हैं जो 2000 वर्षों से उसका अध्ययन करते आए हैं तथा उसका मूल पाठ सुरक्षित रखकर नए नए संस्करण एवं नए नए अनुवाद प्रकाशित करते रहे हैं। इस तरह बाइबल का पाठ और बाइबल का अध्ययन एक दूसरे के पूरक हैं। निष्कर्ष ये कि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो पुराना होते हुए भी निरंतर सामिक है, जैसे ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। देखिए इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 8वां वाक्य। वैसे ही बाइबल में चिरनवीन ईशवाणी सुनाई देती है। बाइबल की पुस्तकों में ईसा मसीह की यह प्रतिज्ञा चरितार्थ होती है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं।
जगत में ईश्वर एक निधान, जगत में ईश्वर एक निधान, पिता पुत्र और पावन आत्मा, पिता पुत्र और पावन आत्मा, तीनों एक भगवान। जगत में ईश्वर एक निधान, जगत में ईश्वर एक निधान, पिता पुत्र अरु पावन आत्मा, पिता पुत्र अरु पावन आत्मा, तीनों एक भगवान। जगत में ईश्वर एक निधान, जगत में ईश्वर एक निधान।
नया विधान भूमिका। न्यू टेस्टामेंट की प्रामाणिक रचनाओं का निर्धारण।
ईसाई बाइबल का पूर्वार्ध ईसा के बहुत समय पहले से प्रचलित यहूदी धर्म ग्रंथ है, क्योंकि ईसाइयों का विश्वास है कि ये ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। उन्हें इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के विषय में कभी संदेह नहीं हुआ। बाइबल के उत्तरार्ध की रचनाओं की सूची निश्चित होने में काफी समय लगा। आरंभिक ईसाइयों के विश्वास के दो आधार थे। पहला आधार लिखित यहूदी धर्म ग्रंथ था और दूसरा आधार ईसा के शिष्यों के साक्ष्य एवं शिक्षा। यह शिक्षा प्रारंभ में लिखित रूप में उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ईसा ने अपने शिष्यों को अपनी शिक्षा लिपिबद्ध करने का नहीं बल्कि उसका प्रचार करने का आदेश दिया था। ये मौखिक शिक्षा किस तरह और कब लिपिबद्ध की गई ये बहुत स्पष्ट नहीं है। कई लोगों ने ईसा की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। देखिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पहला वाक्य। किंतु कलीसिया ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में ईसा के जीवनी विषयक चार ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना। इनका मूल स्रोत ईसा के शिष्यों की प्रारंभिक धर्म शिक्षा अवश्य है, किंतु प्रत्येक ग्रंथ का अपना विशिष्ट उद्देश्य है और उस पर रचयिता की व्यक्तिगत छाप भी स्पष्ट है। प्राचीन परंपरा के आधार पर इनके लेखक क्रमशः मत्ती, मार्कुस, लूकस और योहन माने जाते हैं। संत मार्कुस की रचना के विषय में सर्वसम्मति से माना जाता है कि वह सबसे पहले संभवतः ईसवी सन 65 के आसपास लिपिबद्ध की गई है। कुछ विद्वान संत मत्ती और संत लूकस के ग्रंथों का रचना काल ईसवी सन 70 के पूर्व मानते हैं और कुछ विद्वान ईसवी सन 80 के आसपास। बहुत संभव है कि संत योहन की रचना ईसवी सन 95 के आसपास लिपिबद्ध की गई हो। दूसरी शताब्दी के प्रारंभ की कई ईसाई रचनाओं में संत पौलुस के पत्रों का उल्लेख है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन पत्रों का कोई संग्रह प्रथम शताब्दी ईस्वी में अर्थात उनके रचनाकाल के थोड़े समय बाद ही प्रचलित रहा होगा। इन पत्रों का रचनाकाल सर्वसम्मति से ईस्वी सन 51 से ईस्वी 67 तक माना जाता है। दूसरी शताब्दी उत्तरार्ध के ईसाई साहित्य में प्रेरित चरित्र की प्रामाणिकता के उल्लेख मिलते हैं। ये ग्रंथ संत लूकस के सुसमाचार का उत्तरार्ध समझा जाता था। दोनों का रचनाकाल एक ही है। तीसरी ईसवी शताब्दी के प्रारंभ तक ये रचनाएं ईसाई धर्मग्रंथ के अंशों के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। ईसा की चार जीवनियां, प्रेरित चरित्र, संत पौलुस के 13 पत्र और संत योहन का पहला पत्र। कुछ अन्य रचनाएं सर्वसम्मति से तो नहीं, फिर भी व्यापक रूप में प्रामाणिक मानी जाती थी। वे हैं इब्रानियों के नाम पत्र, संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, संत याकूब का पत्र और संत यूदस का पत्र। पश्चिम में इब्रानियों के नाम पत्र को और पूर्व में प्रकाशना ग्रंथ को बहुत समय तक धर्म ग्रंथ के अंशों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, किंतु चौथी शताब्दी में वर्तमान न्यू टेस्टमेंट की सभी रचनाओं को प्रामाणिक सूची में स्वीकृत कर लिया गया। कुरिंथियों के नाम दूसरे पत्र में देखिए अध्याय 3 वाक्य 14। संत पौलुस ने यहूदी धर्म ग्रंथ को प्राचीन विधान की संज्ञा दी है। इसके आधार पर यहूदी धर्म ग्रंथ अर्थात ईसाई बाइबल का पूर्वार्ध और उसका उत्तरार्ध क्रमशः ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के नाम से विख्यात होने लगे। ईसाई बाइबल के उत्तरार्ध की मूल भाषा यूनानी है। इसके प्रथम चार ग्रंथ सुसमाचार अर्थात खुशखबरी कहलाते हैं, क्योंकि उनमें ईसा द्वारा घोषित मानव जाति की मुक्ति का शुभ संदेश मिलता है। चारों में ईसा की जीवनी तथा उनकी शिक्षा का वर्णन किया गया है और उनका मूल विषय भी एक ही है। वह यह है कि नाजरेत के ईसा यहूदी धर्मग्रंथ के प्रतिज्ञात मसीह हैं। संत मत्ती के सुसमाचार को बाइबल के उत्तरार्ध में प्रथम स्थान पर रखा गया है, क्योंकि वह प्रारंभिक कलीसिया में विशेष रूप से समादृत था। संत मत्ती प्रेरित थे। मार्कुस और लूकस के सुसमाचारों में उनका नाम लेवी रखा गया है। यह सुसमाचार यहूदी पाठकों के लिए लिखा गया है और इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि यहूदी धर्मग्रंथ में मसीह के विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब ईसा में पूरा हो गया है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अतिरिक्त लेखक के पास और लिखित सामग्री थी जो किसी न किसी रूप में संत लूकस के पास भी थी, क्योंकि संत मत्ती तथा संत लूकस के सुसमाचारों में बहुत से स्थलों पर शाब्दिक सादृश्य है। संत मत्ती के सुसमाचार का ढांचा बहुत कुछ संत मार्कुस के अनुसार ही है, किंतु प्रथम दो अध्यायों में ईसा के जन्म तथा मिस्र में प्रवास का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त संत मत्ती ने ईसा की शिक्षा पर विशेष बल दिया है, जो उसे 5 अपेक्षाकृत विस्तृत भाषणों में संकलित किया है, जिन्हें 5-6, 10-13, 18 और 24-25 अध्यायों में देखा जा सकता है। संत मार्कुस का सुसमाचार सबसे संक्षिप्त और सबसे प्राचीन है। संत मार्कुस यरूशलेम के निवासी थे। यरूशलेम का मसीही समुदाय प्रायः उनकी माता के घर में एकत्र होता था। देखें प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्य 12। उन्हें संभवतः संत पेत्रुस द्वारा दीक्षा मिली थी, क्योंकि संत पेत्रुस उन्हें अपना पुत्र कहते हैं। देखें संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 13। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वे संत पेत्रुस के साथ रहे थे और उनकी रचना का मुख्य आधार संत पेत्रुस की धर्म शिक्षा है। संत मार्कुस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य ईसा मसीह को ईश्वर के सर्वशक्तिमान पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। वो ईसा की शिक्षा पर कम उनके चमत्कारों पर अधिक बल देते हैं। उनकी रचना की रूपरेखा इस प्रकार है। प्रारंभ में गलीलिया की जनता ईसा का उत्साह के साथ स्वागत करती है, किंतु वो शीघ्र ही उदासीन हो जाती है, क्योंकि वो ईसा का आध्यात्मिक मसीहापन नहीं समझती है। ये देखकर ईसा गलीलिया के बाहर यात्राएं किया करते हैं तथा अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद वे यरूशलेम में मसीह के रूप में प्रवेश करते हैं। यहूदी नेताओं के बढ़ते विरोध के फलस्वरूप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं और मरने के बाद पुनर्जीवित हो जाते हैं। संत लूकस गैर यहूदी थे। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वो अंताकिया के निवासी थे और उन्होंने इस शहर में ईसाई कलीसिया की स्थापना का विवरण दिया है। देखें प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य 19 से 26 तक। संत लूकस एक वैद्य थे। देखिए कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 14। और ईसाई बनने के बाद संत पौलुस की द्वितीय तथा तृतीय प्रचार यात्राओं में उनके साथी थे। देखिए प्रेरित चरित्र के अध्याय 15 के 36वें वाक्य से अध्याय 20 के 38वें वाक्य तक। उन्होंने संत पौलुस के साथ रोम की यात्रा की थी तथा वहां उनके कारावास के समय उनके साथ थे। नए विधान के एक अन्य स्थल से पता चलता है कि रोम में संत पौलुस के द्वितीय कारावास यानी ईसवी सन 67 के समय भी वे उनके साथ थे। देखें तिमिथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 11। ईसा की जीवनी लिखते समय लूकस के पास संत मार्कुस का सुसमाचार था और कुछ ऐसी लिखित सामग्री भी थी जो मत्ती को भी उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत कुछ एकत्र किया था, जैसा कि वे स्वयं अपनी रचना के प्रारंभ में कहते हैं। उनका उद्देश्य है गैर यहूदी ईसाइयों के लिए ईसा मसीह की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिससे वे ये जान लें कि जो शिक्षा हमको मिली है वो सत्य है। देखिए संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 4। इस कारण वे ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो आसानी से गैर यहूदियों की समझ में नहीं आ सकती है अथवा उनके लिए कम महत्व रखती है। संत लूकस जानते हैं कि ईसा यहूदी धर्मग्रंथ के बहुचर्चित मसीह हैं, किंतु वे इस बात पर कहीं अधिक बल देते हैं कि ईसा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं। वे विशेष रूप से पापियों के प्रति ईसा की दयालुता तथा दीनहीन लोगों के साथ उनकी सहानुभूति का चित्रण करते हैं। उनकी रचना का ढांचा इस प्रकार है। मुक्ति का संदेश स्वर्ग की ओर से आता है। देखिए अध्याय 1 और 2। इनमें ईसा के बचपन का वर्णन भी है। योहन बापतिस्ता उसके आगमन की घोषणा करते हैं। देखें अध्याय 3। ईसा पहले गलीलिया में। देखिए अध्याय 4 वाक्य 9। और बाद में यरूशलेम की ओर बढ़ते हुए शेष फिलिस्तीन में इसका प्रचार करते हैं। देखिए अध्याय 10 19वां वाक्य, जिनकी अधिकांश सामग्री संत लूकस की अपनी है। और अंततोगत्वा मुक्ति का कार्य यरूशलेम में संपन्न होता है। देखिए अध्याय 19 24वां वाक्य। संत योहन सेपेदी तथा सलोमी के पुत्र और संत याकूब के भाई थे। वे प्रेरित और ईसा के प्रिय शिष्य थे। वो संभवतः ईसवी सन 69-70 में फिलिस्तीन छोड़कर एशिया माइनर के एफेसस नगर आए। बहुत संभव है कि उनका देहांत ईसवी सन 98-99 में हुआ हो। अन्य सुसमाचारों की मूल बातें उनके सुसमाचार में भी मिलती हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य, ईसा के चमत्कार तथा प्रवचन, उनका दुख भोग तथा पुनरुत्थान। किंतु संत योहन समझते हैं कि उनके पाठक अन्य सुसमाचारों से परिचित हैं। यही कारण है कि वे प्रायः उनमें दी गई सामग्री छोड़कर नई घटनाओं का वर्णन करते हैं। उनके समय तक ईसा के विषय में भ्रांत धारणाओं का प्रचलन होने लगा था, इसलिए संत योहन का उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वो त्रियक ईश्वर के द्वितीय व्यक्ति हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। देखिए पहला अध्याय 14वां वाक्य, वे मनुष्य भी हैं और ईश्वर भी। उन्होंने मनुष्यों के पाप का प्रायश्चित कर उन्हें नवजीवन प्रदान किया है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर वो अपेक्षाकृत कम घटनाओं का वर्णन करते हैं, किंतु उनका गूढ़ अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। रोटियों के चमत्कार के वर्णन के बाद वे स्वर्ग की रोटी के विषय में ईसा का भाषण प्रस्तुत करते हैं। ईसा जन्मांध को दृष्टि प्रदान करने से पहले कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, और लाजरुस को पुनर्जीवित करने से पहले, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। देखिए अध्याय 11 25वां वाक्य। इस सुसमाचार की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें वर्णित अधिकांश घटनाओं का स्थान यहूदिया तथा यरूशलेम है। विधान के पंचम ग्रंथ प्रेरित चरित में ईसाई धर्म का प्रारंभिक प्रसार प्रस्तुत किया गया है। इसके पूर्वार्ध में यरूशलेम तथा फिलिस्तीन में ईसाई कलीसियाओं की स्थापना के बाद गैर यहूदियों का धर्म परिवर्तन तथा संत पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा का वर्णन मिलता है। उसके अंत में यरूशलेम की प्रथम ईसाई महासभा का विवरण दिया गया है और गैर यहूदियों के ईसाई बनने के परिणाम स्वरूप जो समस्याएं उत्पन्न हो गई थी उनका समाधान करना उस महासभा का उद्देश्य था। इस पूर्वार्ध के प्रधान नायक संत पेत्रुस हैं। उत्तरार्ध में लेखक ने केवल संत पौलुस की चर्चा की है और उन्हें रोमन साम्राज्य में प्रमुख ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभु ईसा मसीह के बाद संत पौलुस न्यू टेस्टमेंट के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। पौलुस पहले ईसाइयों पर अत्याचार करते थे, किंतु दमिश्क के निकट ईसा के दर्शन होने के बाद वे 25 वर्ष की अवस्था में ईसाई धर्म के अनुयायी बन गए और उन्होंने यहूदियों एवं गैर यहूदियों में दमिश्क, अंताखिया, कुप्रुस, एशिया माइनर, मैकेडोनिया, यूनान, रोम तथा रोम के प्रथम कारावास के बाद संभवतः स्पेन में भी ईसाई धर्म का सफल प्रचार किया। इतिहास इसका साक्षी है कि ईसाई धर्म को शीघ्र ही रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसका श्रेय मुख्य रूप से संत पौलुस को दिया जाना चाहिए। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार संत पौलुस लगभग 55 की उम्र में रोम के द्वितीय कारावास के अंत में वहीं शहीद हो गए। पौलुस के पत्रों से पता चलता है कि उनके अथक परिश्रम का प्रेरणा स्रोत प्रभु ईसा मसीह की अनन्य भक्ति था। वे कहते हैं, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति, किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं क्या चुनूं, मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चल देना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं, यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। देखिए फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 22 से 24 तक। भक्ति एवं धर्मोत्साह के अतिरिक्त पौलुस के व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता ईसाई धर्म के विषय में उनका मौलिक चिंतन है। वो शताब्दियों से ईसाई धर्म पंडितों को प्रभावित करते आ रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संत योहन और संत पौलुस की रचनाएं ईसाई धर्म विज्ञान की नींव है। संत पौलुस के पत्रों का रचनाक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले ईसवी सन 51 में थैसलेनिकियों के नाम दो पत्र हैं जो कुरिंथ में लिखे गए थे। इसके 5-6 साल बाद की अवधि में कुरिंथियों के नाम दो पत्र तथा फिलिपियों, गलातियों एवं रोमियों के नाम पत्र लिखे गए थे। बहुत संभव है कि उन्होंने रोम के प्रथम कारावास के समय कलोसियों, एफसियों तथा फिलेमोन के नाम पत्र लिखे हों। उनके नाम पर प्रचलित तीन शेष पत्रों के विषय में विशेषज्ञों में मतभेद है। यद्यपि सभी ईसाई उन्हें न्यू टेस्टामेंट के प्रामाणिक अंश मानते हैं। संभव है कि तिमिथी के नाम पहला पत्र और तितुस के नाम पत्र रोम में संत पौलुस के प्रथम कारावास के बाद लिखे गए हों और तिमिथी के नाम दूसरे पत्र का रचना काल रोम के द्वितीय कारावास का समय हो। फिर भी शैली के आधार पर अन्य विद्वानों का मत है कि इन तीनों पत्रों की रचना में लिपिक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है और उसने अपनी ओर से कुछ अंश जोड़ दिए हैं। इब्रानियों के नाम पत्र की रचना संभवतः संत पौलुस की मृत्यु के आसपास हुई है। उपसंहार संत पौलुस की शैली से समानता रखता है, किंतु शेष अंश संत पौलुस के विचारों के आधार पर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं। संत याकूब का पत्र निश्चय ही प्राचीन है, किंतु इसका रचयिता अज्ञात है। ये पत्र ईसा के संबंधी और प्रथम ईसाई महासभा के समय यरूशलेम की कलीसिया के अध्यक्ष संत याकूब के नाम पर प्राचीन काल से प्रचलित है। अधिक संभव यह है कि इसकी रचना संत याकूब के प्रवचनों के आधार पर ईसवी सन 80 के आसपास की गई है। संत पैत्रुस की मृत्यु ईसवी सन 64 या 67 में हुई थी। उन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले सिल्वानुस की सहायता से, देखें अध्याय 5-12 वाक्य, एशिया माइनर में बिखरे हुए यहूदियों को अपना पहला पत्र लिखा था। देखें अध्याय एक पहला वाक्य। उनके नाम पर जो दूसरा पत्र प्रचलित है उसकी रचना संभवतः दूसरी शताब्दी ईस्वी के तीसरे दशक में हुई थी और वो सर्वप्रथम सिकंदरिया की कलीसिया में प्रचलित होने लगा था। उसमें धर्मग्रंथ के अंश के रूप में संत पौलुस के पत्रों की चर्चा है। देखिए तीसरा अध्याय 15वें वाक्य से 16वें वाक्य तक और उसके कुछ अंश संत यूदस के पत्र पर आधारित है। ईसवी चौथी शताब्दी के यूसेबियुस के अनुसार संत मार्कुस ने सिकंदरिया में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। संत मार्कुस संत पेत्रुस के सहयोगी थे। देखिए संत मार्कुस का परिचय। अतः सिकंदरिया में संत पेत्रुस की धर्म शिक्षा परंपरागत रूप में प्रचलित रही होगी और इसी से लेखक ने अपना पत्र संत पेत्रुस के नाम से प्रचलित करा दिया। संत योहन के पहले पत्र का रचयिता अपने को ईसा के जीवन का प्रत्यक्षदर्शी कहता है। देखिए पहला अध्याय पहले वाक्य से 8वें वाक्य तक और चौथा अध्याय 14वां वाक्य। इस कारण प्राचीन परंपरा उसे सर्वसम्मति से प्रेरित संत योहन से अभिन्न मानती है। दूसरे और तीसरे पत्रों के संबंध में मतैक की नहीं है, फिर भी बहुत संभव है कि उनके रचयिता वही प्रेरित संत योहन है। इन तीनों पत्रों का रचनाकाल ईसवी सन 90 के पूर्व माना जाता है। संत यूदस के पत्र की रचना संभवतः ईसवी सन 85 में हुई थी। इसका रचयिता अज्ञात है, यद्यपि ये पत्र प्राचीन काल से ईसा के संबंधी यूदस के नाम पर प्रचलित था। प्रकाशना ग्रंथ का रचयिता अपने को योहन और नबी कहता है, किंतु वो कहीं भी प्रेरित योहन होने का दावा नहीं करता। द्वितीय शताब्दी ईस्वी के अधिकांश कलीसियाएं इसके रचयिता को चतुर्थ सुसमाचार के लेखक संत योहन से अभिन्न मानती थी। फिर भी प्रारंभ से ही कुछ कलीसियाओं ने इस अभिन्नता को अस्वीकार किया था और आज तक ईसाई विशेषज्ञों में इसके संबंध में मतभेद हैं। कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि प्रकाशना ग्रंथ प्रेरित संत योहन द्वारा नहीं बल्कि एफेसस निवासी शिष्यों द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। कुछ अन्य विशेषज्ञ इस मान्यता को विस्तार देते हुए ये कहते हैं कि संत योहन के सुसमाचार की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। जो भी हो, सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया जाता है कि प्रकाशना ग्रंथ का रचना काल प्रथम शताब्दी ईस्वी का अंतिम दशक है। प्रकाशना ग्रंथ के भविष्य सूचक दृश्यों को संसार के अंत के क्रमबद्ध वर्णन के रूप में देखना आवश्यक नहीं है। इसके विभिन्न प्रतीकात्मक दृश्यों का उद्देश्य संसार के अंत में बुराई की शक्तियों की पराजय, संसार के न्याय तथा मसीह एवं उनकी कलीसिया की महिमा प्राप्ति का प्रतिपादन है।
पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है।